सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 14वां अध्याय के 14वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। स विदित्वात्म जानाम नो भावम संतान भावनः त्रयो दशाद अदत्तात् तासाम यास्ते शीलम अनुव्रता। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की, हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। तात्पर्य, सामान्यतः कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में सकुचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से, यथा दादी के माध्यम से जिसके साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दिति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतः वह संतानहीन क्यों बनी रहे जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्र कांचन वाहनी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिदेवांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये प्रसंग चल रहा है संध्या समय दिति का गर्भ धारण। सो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि कश्यप जो मुनि है वो भी बहुत क्वालिफाइड है, बहुत योग्य है, और जो उनकी पत्नी दिति है दक्ष की पुत्री वो भी बहुत क्वालिफाइड है, बहुत योग्य है, अपने पति के प्रति समर्पित है। लेकिन क्योंकि अनुचित समय में वो प्रार्थना कर रही थी अपने पति से उसको संतुष्ट करने के लिए, तो उस कारण से जो परिणाम हुआ वो परिणाम अच्छा नहीं हुआ, है ना। सो ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत अच्छे से, हम बहुत अच्छे हैं और सब काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अनुचित समय में कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे अदिति जो है, अदिति उसने बहुत अच्छे से व्रत किए, लेकिन एक टाइम वो सोने से पहले नहाना भूल गई थी, है ना। तो इंद्र को मारने के लिए संतान उत्पत्ति कर रही थी, लेकिन इंद्र ने जैसे मौका देखा कि ये अनुचित कार्य हो गया, तो इंद्र ने गर्भ में उसके जो अदिति के जो भ्रूण था उसके 49 उसके टुकड़े कर दिए, नहीं जिनको मरुत कहते हैं, है ना। सो कहने का मतलब है कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, शुचि का मुची का बहुत ध्यान रखना चाहिए हर समय, है ना। तो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर जिति कहनी है कश्यप ऋषि को कि हम आपके प्रति, हमारे जो हम 13 बहने हैं आपके प्रति बहुत पतिव्रत हैं और हमने हमेशा आपकी बात मानी है, तो आप प्लीज़ मुझे संतान प्रदान करें, है ना, मुझे संतुष्ट करें, क्योंकि अभी तुरंत क्यों करें, क्योंकि कामदेव मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। संध्या का समय था, संध्या के समय जो है कश्यप ऋषि ने उसको बोला भी कि यह इस समय तो शिव जी निकलते हैं भूत प्रेतों के साथ में, तो आप प्लीज़ अभी इस बारे में मत सोचिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। और उन्होंने काफ़ी देर तक दीति को समझाया कि ताकि वो टाइम बीत जाए, लेकिन दीति ने वो बात माने नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि संतान कुछ देर बाद प्रदान नहीं की जा सकती, गर्भाधान कुछ देर बाद भी हो सकता था, लेकिन दीति जो है वो बहुत ही पीड़ित थी काम वासना से, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि अभी मुझे संतुष्ट करो। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कश्यप ऋषि हैं उसको थोड़ा डांट देते, उसको डांट देते हैं, अभी चुप करके बैठो, अभी बाद में बात करेंगे, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन कश्यप जो ऋषि हैं वो किस सेवा से जो है वो प्रभावित हो गए थे और इस स्थिति में नहीं थे कि उसको डांट सकें या उसको समझा सकें कि भैया अभी मौका नहीं है, अभी ठीक अवसर नहीं है करके, है ना। सो जो स्त्री है वो पति को कंट्रोल कर सकती है सेवा के द्वारा, है ना। जो आजकल जो मूवमेंट चली है इक्वालिटी की, अच्छा ऊपर से हो रहा है, मुझे लगा इसमें कुछ है। सो जो मूवमेंट है इक्वालिटी की कि स्त्री और पुरुष एक है, तो वो एक है आध्यात्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से एक नहीं है। और सवाल ये नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेष्ठ है कि पुरुष श्रेष्ठ है, सवाल ये है कि स्त्री और पुरुष के अलग अलग कार्य क्या हैं, है ना। पुरुष का कार्य है कि वो स्त्री को सुरक्षा प्रदान करे, उसको संतुष्ट करे और घर को चलाए, पैसा कमा के लाए, और स्त्री का काम है अपने पति की सेवा करना और सेवा के द्वारा उसको संतुष्ट करना। अगर कोई ये सोचे कि हम तर्क के द्वारा लड़ के अपनी बात सिद्ध करवा लेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, वो काम नहीं करती चीज, है ना। अगर घर में अगर शांति चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो स्त्री और पुरुष को अपना अपना रोल अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्त्री वश में कर सकती है पुरुष को, जैसे दीति ने वश में कर लिया कश्यप ऋषि को, नहीं कि सेवा के माध्यम से उसको संतुष्ट करके, उससे लड़ झगड़ के नहीं, है ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं काबू में कर सकते। अगर पति को कंट्रोल करना है तो उसको सेवा के माध्यम से कंट्रोल करना होगा। एक जगह हम लेक्चर दे रहे थे नांगलोई में, तो वहाँ हमने बोल दिया कि स्त्रियों को पति की बात मानना चाहिए, तो वहाँ झगड़ा शुरू हो गया, ऐसे कैसे कह दिया आपने। पहले माता पिता अपने जो पुत्री है उसको विदा करने से पहले बोलते थे कि भैया सबको कॉम्प्रोमाइज करना, तुम्हारा कर्तव्य है कॉम्प्रोमाइज करना, तुम संभालना। अब तो वो बोलते हैं भैया फोन कर देना, फटाफट आ जाएंगे, तो इसलिए झगड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं इसलिए झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले स्त्री और पुरुष कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कमी हो, टॉलरेट करते थे, अभी सहन शक्ति जो है खत्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत होती है वो माँ बाप जो है, और लड़कियों के माँ बाप तो सबसे बड़े दुश्मन है लड़की के, है ना। वो ये नहीं सोचते कि लड़की को आप कितनी भी सुविधाएं दे दो, वो खुश हमेशा पति के साथ ही रहेगी, माँ बाप के साथ नहीं खुश रह सकती लड़की, है ना। दो चार दिन की बात अलग है कि आप गए दो चार दिन, चलो मिल के आ गए, वापस अपने घर में आ गए। जो जो पुत्री है वो पराया धन है, आपके पास आपकी सुरक्षा में है, जब समय आए तो दान कर दो, इसीलिए कन्यादान बोलते हैं ना, है ना। उसके बाद आपका कुछ अधिकार नहीं है, अधिकार पति का है। ये बात जो आज की जनरेशन है वो धीरे धीरे भूलती जा रही है, और इसके कारण प्रॉब्लम्स भी आ रही है। नहीं, प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि वो पहले ही बोल देते हैं, देख कॉम्प्रोमाइज मत करियो, कुछ भी हो जाए, आखिर हमने तुम्हें इतना पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं जो वैदिक स्थिति है, जो वैदिक रीति है, वो ये है कि जो पति है उसको बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, अच्छा भक्त होना चाहिए, और स्त्री जो है वो अपने पति के प्रति समर्पित होनी चाहिए, और इसी समर्पण से जो गति उसके पति को मिलेगी वो स्वतः उसकी अधिकारिणी बन जाएगी, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, बेटर आप अर्धांगिनी, करेगा पति फल, क्योंकि सेवा के माध्यम से वो फल की अधिकारिणी बन जाती है, है ना। तो झगड़ने से कुछ नहीं होगा, सेवा के माध्यम से फल मिलेगा, सेवा के माध्यम से पति को वश में किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। और हम अपने शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं बहुत सारे, है ना। आप देखो कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियां हैं जिन्होंने पतिव्रत के माध्यम से भगवान तक को वश में कर लिया, है ना। जैसे अनुसूया है, है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु तीनों को जो है वश में कर लिया अपने, नहीं, है ना। सो इसी तरह से चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं पतिव्रत धर्म का। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत में, और बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ में वो बात कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो संदर्भ भी मैं लेके आऊँगा, पहले मैं आपको वो बात बता दूँ जो चैतन्य महाप्रभु ने बोली। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम की व्याख्या कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक कुष्ठी विप्र था, एक ब्राह्मण था, उसको उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन उसकी जो स्त्री थी वो पतिव्रता थी, है ना। आपने सुनी है ये स्टोरी। सो बहुत सेवा करती थी अपने पति की, पूरा शरीर गल गया था उसका, ब्राह्मण का, उसको उठा के लेके जाती थी जहां भी लेके जाना है, क्योंकि चल भी नहीं पाता था, है ना, कुष्ठ रोग के कारण। सो उसने अपनी पत्नी से बहुत उदास बैठा हुआ था, पत्नी ने बोला आप इतने दिन हो गए उदास क्यों बैठे हो, तो उसने बोला एक जो नगर की वैश्या है वो मैं वैश्या का संग करना चाहता हूँ। एक तो भिखारियों वाली हालत थी उनकी, ऊपर से कुरूप, है ना, बिल्कुल सारा शरीर के अंग गल गए थे उसके, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि चलो सेवा हो रही थी, साफ कर रही थी उसके शरीर को उसकी पत्नी, फिर भी देखो उसके दिमाग में वैश्या का संग करने की बात चल रही है, है ना। जो काम वासना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही प्रबल है काम वासना, नहीं, और मृत्यु के समय तक काम वासना पीछा नहीं छोड़ती, ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में पीछा छोड़ देती है, वृद्धावस्था में भी पूरा उसको पकड़ के रखती है। और प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशन में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चों के माध्यम से अपनी काम वासना पूरी करता है। प्रभुपाद एक जगह पे एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे बच्चों के माध्यम से काम वासना पूरी करने की कोशिश करते हैं जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि खुद बूढ़े हो गए अब कर नहीं पा रहे काम वासना की पूर्ति. सो वो स्त्री ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ. तो वो स्त्री वैश्य के पास गई, उसको बोला मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ. उसने बोला मुझे जरूरत नहीं है. वैश्य ने कहा मुझे जरूरत नहीं है. तो उसने बोला मैं पैसे थोड़ा ना मांग रही हूँ आपसे, मैं तो फ्री सेवा करूँगी आपकी. तो उसने कहा फ्री सेवा करने कर ले भाई, क्या फर्क पड़ता है. तो फ्री सेवा करने शुरू कर दी और इतनी सेवा की कि वो वैश्य मजबूर हो गई उसको पूछने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, है ना. तो उस ब्राह्मण की स्त्री ने बोला कि मेरे पति जो है आपका संग करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कुछ समय उनके साथ बिता दो. तो वैश्य ने कहा ठीक है चलो भेज देना. तो वो लेके आ गए उसको अपने पति को वैश्य के पास. तो वैश्य ने दो थालियों में भोजन लगाया, एक लोहे की थाली में एक सोने की थाली में, है ना. तो भोजन लगाया सेम आइटम्स थी और उसको बोला खाओ. तो उसने एक कौर खाया लोहे की थाली में से. तो वैश्य ने बोला दूसरा कौर सोने की थाली में से खाना, बहुत अच्छा लगेगा. तो उसने खाया, फिर उसने कहा अच्छा अब लोहे की थाली में से खाओ. तो ब्राह्मण ने सोचा ये पागल है क्या ये वैश्य, दिखने में सुंदर है लेकिन दिमाग खराब हो गया लगता है इसका. तो वैश्य ने उससे पूछा बाद में अच्छा कौन सा वाला खाना टेस्टी था, लोहे की थाली वाला या सोने की थाली वाला. तो ब्राह्मण ने कहा थाली से थोड़ा ना भोजन के स्वाद में फर्क आ रहा है, भोजन तो वही है तो टेस्ट सेम था. तो वैश्य ने कहा फिर तुम मेरे पास क्या करने आए हो, मेरे पास क्या करने आए हो, है ना, टेस्ट सेम है. आप किसी भी स्त्री का संग करो वही बात है, तो मेरे पास क्या करने आ गए आप जाके अपनी पत्नी से संतुष्ट होने रहते. तो एकदम उसका माइंड चेंज हो गया, है ना. इसी तरह से बिलमंगल ठाकुर को भी एक वैश्य ने ज्ञान दिया था. नहीं पहले की तो वैश्याएं भी वो भगवत परायण होती थी, समझदार होती थी. आजकल की संभ्रांत स्त्रियां वो भी वैश्याओं से गिरी हुई हैं. नहीं एक बार मैं बॉम्बे जा रहा था, कई साल पहले हो गए, करीब 15-20 साल पहले की बात है. तो सुबह का टाइम था, बॉम्बे की मैं फ्लाइट ले रहा था. तो मेरे आगे एक स्त्री खड़ी हुई थी. सुबह 6:30-7 बजे का टाइम होगा, एकदम नशे में धुत, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है वो. और बहस किए जा रही थी वो टिकट काउंटर वाले से, आधा घंटा लगा दिया उसने, कोई उसको बोल नहीं रहा. क्योंकि भारत के अभी लॉ ऐसे हैं कि पुरुषों को नपुंसक बना दिए. अगर किसी स्त्री ने बोल दिया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है तो कोई सुनवाई नहीं है. तो सर हर व्यक्ति ये सोचता है कि भैया दूर ही रहो, चुप बैठे रहो. तो नपुंसक बना दिए हमारे लॉज ने. अभी मैं कल परसों कोई बता रहा था कि अब पुरुषों की मदद के लिए एक पुरुष हेल्पलाइन शुरू हो गई है. पेंसिल मैनसेल, अच्छा मैनसेल खुल गया कि अगर आपको स्त्री परेशान कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाओ हम हेल्प करेंगे. क्या जमाना आ गया. नहीं तो वो जो स्त्री जो वो ब्राह्मण था वो अपनी वाइफ के पास वापस गया, उसे क्षमा मांगी, बोला चलो घर चलते हैं. घर जा रहे थे और रस्ते में मार्कंडेय ऋषि मिल गए और उसका पैर छू गया. मार्कंडेय ऋषि को उठा के ले जा रही थी, वो पास से निकली, उसका पैर मार्कंडेय ऋषि को छू गया और मार्कंडेय ऋषि को गुस्सा हो गया, है ना. उसने बोला क्या मेरे को कंटेमिनेट कर दिया तूने, दुष्ट, जा तू अगले सुबह जो है सूर्य का मुख नहीं देखेगा तू, के मतलब सूर्योदय से पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी. तो स्त्री ने बोला कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो सुबह सूरज उदय नहीं होगा.
और सूरज उदय नहीं हुआ,
इतनी ताकत थी उसके अंदर, नहीं पतिव्रत धर्म के अंदर। तो फिर भगवान आए और उसको निरोगी भी कर दिया ब्राह्मण को और जीवन दान भी दिया, तो सूर्य देवता तब जाके उगे, है ना। तो ये पतिव्रत धर्म है। और पतिव्रत धर्म तो है, लेकिन हमारे लिए इसकी क्या वैल्यू है। चलो स्त्री के लिए पति की सेवा करना इम्पोर्टेंट है, और कई बार लोग बोलते हैं कि पति जो है वो हमारा जो हस्बैंड है वो भक्त नहीं है, या और फिर भक्त तो नहीं है एक बात है, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्त तो नहीं होते लेकिन वाइफ को रोकते भी नहीं, और कुछ लोग हैं वाइफ को रोकते भी हैं, उससे गाली गलौज भी करते हैं ना। तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय भी पति के संरक्षण में रहना चाहिए, नहीं क्योंकि पति का संरक्षण छोड़ दिया तो फिर जीवन यापन कैसे होगा, कैसे आप मतलब अगर जो पति है अगर आपको डांट डपट रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, चलो आपको घर में तो रख रहा है ना वो, तो घर में चुपचाप रहते रहो और भक्ति करते रहो, नहीं। और धीरे धीरे हमने देखा है कि अगर कोई इस तरह से चुपचाप अपना सहता रहता है स्त्री, धीरे धीरे पति बदल जाता है, वो ज़्यादा टाइम तक प्रताड़ना नहीं देता रहता। जब सामने से प्रतिरोध ही नहीं आ रहा, तो प्रतिरोध आए तो मज़ा आता है, अगर प्रतिरोध ही नहीं हो रहा तो बोल रहे हैं कुछ इसको असर ही नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा करने के लिए, नहीं। तो धीरे धीरे पति जो है वो सुधर जाता है आप कह सकते हो। सो कैसी भी परिस्थिति हो, अपने घर में रहकर ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे इस विशेष परिस्थिति में डाला है मेरे कर्मों के अनुसार, है ना। मेरे कर्म ऐसे थे, मुझे ऐसी परिस्थिति में मिली मुझे, और अगर इस परिस्थिति में मैं अच्छे से भगवान की भक्ति करूंगी तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि अगर सब कुछ आराम से चल रहा है और भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा है, अगर मुश्किलें ज़्यादा हैं, फिर भी अगर आप भक्ति करो तो उससे आपका यश भी बढ़ेगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे कि देखो कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन ये भक्ति करते जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे भक्त हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद का उदाहरण अगर आप देखें, प्रभुपाद अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती तो वो बात नहीं होती। आज हम प्रभुपाद की जय इसलिए भी बोलते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें आईं लेकिन प्रभुपाद अडिग रहे, और प्रभुपाद अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा थी, प्रभुपाद की अगाध श्रद्धा थी, और प्रभुपाद कभी भी विचलित नहीं हुए और प्रचार कार्य में लगे रहे, नहीं। अगर कोई और होता प्रभुपाद की जगह तो वो शायद हट जाता पीछे, नहीं। सो जितनी मुश्किलें ज़्यादा होंगी और हम भक्ति में लगे रहेंगे, उतना जो है भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, उतनी हमारी जो प्योरिफिकेशन है वो ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उसको एक टेस्ट की तरह हमें लेना चाहिए अपने जीवन में। तो स्त्री के लिए तो चलो हम मान लिया कि पति की सेवा करना इम्पोर्टेंट है, पति की सेवा करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आध्यात्मिक जीवन में पतिव्रत होने का क्या मतलब है, चेस्ट होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमें गुरु के प्रति पूरी तरह श्रद्धावान होना चाहिए। हमें जो भक्त है उसको ये हमेशा इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु के पास उनकी हर समस्या का समाधान है, गुरु सक्षम है पूरी तरह से हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। ज़रूरत है कि हम गुरु में पूरी श्रद्धा रखें और गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। कई बार हो सकता है कोई बात हमें गुरु की नहीं समझ में आ रही हो, है ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु की वो बात पता नहीं क्या बात है, कुछ मतलब गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे में योग्यता नहीं है गुरु की उस बात को समझने के लिए। अगर हम अच्छे से साधना भक्ति करते रहेंगे तो कभी हमें ऐसी बुद्धि मिलेगी, कभी हम इतने योग्य हो जाएंगे कि हम गुरु की उस शिक्षा या उस बात को हम समझ पाएंगे, है ना। तो कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा गुरु की आज्ञा में, गुरु के आचरण में हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, है ना, पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर किंचित मात्र भी श्रद्धा में कमी है तो प्रॉब्लम है। जब तक हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, हम भक्ति में वांछित प्रगति नहीं कर पाएंगे, है ना। भक्ति में प्रगति करने का मतलब है कि हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि हमें ये जानना चाहिए, आमी तो कंगाल, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ और मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए और कृष्ण प्रेम गुरु के पास है। तो जब तक मैं गुरु की अच्छे से सेवा नहीं करूँगा, जब तक मेरी गुरु के अंदर अगाध श्रद्धा नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम भगवत गीता, भागवतम इत्यादि हम ग्रंथ पढ़े तो कई बार हमें लगता है कि प्रभुपाद पता नहीं ये बात क्यों इसमें लिख रहे हैं, कई बार विरोधाभास लगता है दो बातों में, प्रभुपाद कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि बात बन नहीं रही, लेकिन प्रॉब्लम प्रभुपाद या ग्रंथ में नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हम अभी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और हमें और सीनियर भक्तों से के पास जाना चाहिए, उनके पास उस बात को रखना चाहिए और उनसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस बात में डाउट नहीं है कि प्रभुपाद की किसी भी बात में कोई विरोधाभास नहीं है, प्रभुपाद की सारी इंस्ट्रक्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है प्रभुपाद की शिक्षाएं। और जो प्रभुपाद के शिष्य, जो हमारे गुरु हैं, उनकी शिक्षाएं और आचरण भी एकदम स्पष्ट है। हम कई बार कई चीजों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए हमें ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि गुरु जो है, जो हमारे गुरु हैं और जो हमारे गुरु के गुरु भाई हैं, वो सब बहुत अच्छे से भक्ति में लगे हुए हैं। और अब ये भी कहा जा सकता है कि भक्ति में तीन कारण से लगा जाता है, अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है या भक्ति में जुड़ा हुआ है तो तीन स्टेजेस में वो जुड़ता है, नहीं। पहला जो स्टेज होती है डर के कारण, गुरु का डर होता है कि गुरु को पता चल गया तो क्या होगा, नहीं। फिर जब वो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर कर्तव्य की भावना आ जाती है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना ही है, नहीं। और जब भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, तो फिर ये भावना आ जाती है कि मुझे गुरु को प्रसन्न करने के लिए करना है, तो ये लव, ये प्रेम की भावना है। तो तीन स्तर पे सेवा चलती है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो भक्त है वो किस स्तर पे सेवा कर रहा है, वो किस स्तर पे काम कर रहा है, नहीं। तो अगर हम देखें कि अगर डर की भावना से काम करता है तो हर बार वो काम लंबे समय तक नहीं चलता, है ना। कई बार वो काम होता है, कई बार नहीं भी होता, ठीक है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि किसी को पता तो चल नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम 16 माला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो चलो 2 माला कम भी कर ली तो क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा कोई आके हमारे घर में देखने वाला है, नहीं। तो जब डर की भावना होती है तो डर की भावना में व्यक्ति कई बार काम करता है ठीक से, कई बार नहीं भी करता, है ना। और जो कर्तव्य की भावना होती है तो उसमें जो सेवा की अवधि बढ़ जाती है, लेकिन जब प्रेम की जब स्थिति आती है तो जो भक्त है वो निर्बाध रूप से लगातार सालों साल सेवा करता रहता है। तो हम किसी के हृदय में नहीं घुस सकते, लेकिन अगर हम देखें, देखो ये 20 साल से लगातार सेवा में जुड़ा हुआ है, किए जा रहा है सेवा और कभी भी विचलित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये डर के या कर्तव्य के कारण नहीं है, इसका मतलब अब इस भक्त में प्रेम जागृत हो गया है, वो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि डर के कारण या कर्तव्य की भावना से सेवा करना गलत है, वो भी अच्छा है, क्योंकि ये शुरुआती दौर होते हैं। ये हर व्यक्ति को पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा, एकदम छलांग मार के 20वीं सीढ़ी पर नहीं जा सकता। तो पहली सीढ़ी पे कदम रखना अच्छी बात है, लेकिन पहली सीढ़ी पे खड़े रहना अच्छी बात नहीं है, है ना। तो डर के कारण और या कर्तव्य के कारण अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उस स्तर पे नहीं रहना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए और हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए, है ना। तो भक्तों के लिए पतिव्रत होने का मतलब है गुरु के आदेश में श्रद्धा होना और गुरु की हर बात को, गुरु की हर शिक्षा को बहुत गंभीरता से अपने जीवन में उतारना और गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमें गुरु की कृपा मिलेगी और हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे और गुरु की कृपा के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।